हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ध्रुव को तारा से दूर हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास होने लगा था। ऊपर से कृषा के कहने पर जब उसने अपने दिल की सुननी चाही और आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने तारा के साथ बिताए हुए लम्हे आ गए। इन सब ने ध्रुव को डरा दिया था। वो प्यार जैसे इमोशंस में पड़कर खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। वैसे भी ध्रुव ने महसूस किया था कि तारा के आसपास होने पर वो कुछ और ही इंसान बन जाता है। ध्रुव ने वापस मुंबई ना जाने का फैसला किया और वहीं पर रुकने का सोचा। वहीं अंदर कृषा हैरान थी कि आखिर युग ने ध्रुव को ये क्यों कहा कि वो जिस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा है उसका सामना करे। युग ने कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। याशी ने सब सुना तो वो युग से बोली, डैड, आप मुझे और मॉम को इग्नोर क्यों करते रहते हो? ऊपर मैंने आपसे पूछा था कि क्या भाई की शादी होने वाली है, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। दिस इज़ रियली बैड। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें और क्रिश को इग्नोर करूं याश। हाँ, मैं वक्त आने पर ही जवाब देता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे भाई की शादी की बात है तो अभी कुछ तय नहीं है, युग ने याशी को प्यार से समझाते हुए कहा। ओके, फिर शादी होने पर बात करेंगे, याशी ने मुस्कुराकर कहा और कृषा को खुद को गोद में लेने का इशारा किया। कहने को याशी इस बर्थडे पर 8 साल की हुई थी, लेकिन सब उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो अभी भी कोई छोटी बच्ची हो। कृषा ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, याशी मैडम, भगवान ने ये 2 पैर चलने के लिए दिए हैं। जब से आई हो हम सबकी गोद में ही घूम रही हो। हाँ, क्योंकि आपके साथ स्पेशल फील होता है ना, याशी ने हंसकर कहा और कृषा को किस कर लिया। बटरिंग करनी तो अच्छे से आने लगी है। चलो अब आओ मेरे साथ, वैकेशन वर्क पूरा करो वरना तुम्हारी टीचर मुझे शिकायत लगाएगी, कृषा ने उसका नाक खींचते हुए कहा तो याशी ने मुंह बनाया। कृषा याशी को ले जाने लगी। जाने से पहले उसने युग की तरफ देखकर कहा, और तुम इतनी आसानी से मेरी बात टाल नहीं सकते हो। वहाँ ध्रुव अजीब रिएक्ट कर रहा है और यहाँ तुम पहेलियाँ बुझाते रहते हो। मुझे ऐसे लगता है मैं तुम दोनों के बीच पागल हो जाऊंगी। मेरे रहते तुम पागल नहीं हो सकती। ऐसा करो, तुम अपने बेबी को संभालो, याश को मुझे दे दो, इसे मैं देख लूंगा, युग ने जवाब दिया और याशी को फिर से गोद में ले लिया। उसकी इस हरकत पर कृषा ने सिर हिलाकर कहा, क्या कहता है युगराना, मुझे कुछ समझ नहीं आता। याशी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे हो, स्कूल वापस कैसे भेजोगे? याशी वापस नहीं जाएगी और ना ही हम। आई नो तुम्हें यहाँ रहना कुछ खास पसंद नहीं है, पर आदत डाल लो, युग ने सख्त आवाज में कहा और याशी को लेकर चल गया। उसके इस फैसले से कृषा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। युग याशी को बाकियों से ज्यादा प्यार करता था और उसी ने दिल पर पत्थर रखकर उसे दूर भेजने का फैसला लिया था, और अब युग अपना ही फैसला बदल रहा था। कृषा को सब काफी अजीब लगा। जब याशी को पहली बार पढ़ने के लिए उनसे दूर भेजा गया था तब सबसे ज्यादा परेशान युग ही था। वो हर वीकेंड पर उससे मिलने जाता था। वहीं दूसरी तरफ मेहर अपने लगेज के साथ घर पहुंची थी। प्रतीक से बचने के लिए वो बाहर ही थी। उसे लगा कि प्रतीक इस वक्त ऑफिस से आए नहीं होंगे, ये सोचकर मेहर घर आई। लेकिन जैसे ही प्रतीक को सामने देखा तो मेहर के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रतीक ने मेहर को उसके सामान के साथ देखा तो वो हल्के गुस्से में बोले, नहीं लेकर गया ना वो लड़का तुम्हें अपने साथ में? यही सही वक्त है उन्हें ये जताने करने का कि वो 3 पड़ाव हमारे पास हैं। उन्हें सच का पता नहीं है, हम प्रेशराइज करके कुछ भी करवा सकते हैं। अब तो मुझे भी यही लग रहा है डैड, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ध्रुव शादी से मना ना कर दे। उसने सबके सामने मुझे प्रपोज करके एंगेजमेंट की थी, लेकिन आपने नोटिस किया, युग राणा ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी वाइफ भी मुझे पसंद नहीं करती है, मेहर ने अपने दिल का डर जाहिर करते हुए कहा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, उन्हें इंडिया आने दो, फिर मैं सीधा शादी की बात करूंगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए शांत रहो, यही सही रहेगा, प्रतीक ने जवाब दिया। प्रतीक ने ही मेहर को ध्रुव के पीछे जाने को कहा था, लेकिन वो खाली हाथ लौट आई थी तो उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। मेहर का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो कुछ कह भी नहीं पाया। अचानक मेहर प्रतीक के गले लग गई और इमोशनल टोन में बोली, आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन मुझे ध्रुव अच्छा लगने लगा है। डैड, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ इस शादी को किसी भी हाल में कैंसिल मत होने दीजिएगा। मुझे तुम्हारी इमोशंस की वैल्यू है बेटा, और साथ ही ये शादी सच में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ध्रुव राणा तुमसे छोटा था तो मैंने पहले कभी तुम दोनों की शादी के बारे में नहीं सोचा था। ऊपर से मैंने दक्ष के साथ सेटलमेंट कर रखा था तो मजबूरी में तुम्हारी शादी उसके साथ फिक्स करनी पड़ी। लेकिन जब उस रात उसने खुद आगे आकर तुमसे शादी करने के लिए कहा तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। अगर हमें माफिया बिजनेस से आगे निकलकर रियल माफिया की दुनिया में जाना है तो ध्रुव राणा से बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकती। वो अगला माफिया किंग है। इसी से समझ जाओ कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा हो सकती है उससे शादी करने के बाद। सो डोंट वरी, मैं ये शादी हर हाल में करवाऊंगा, प्रतीक ने उसे सब समझाते हुए कहा। मेहर के लिए माफिया पोजिशन मायने रखती थी। राणा फैमिली के नाम की वैल्यू क्या थी ये वो भी समझती थी, लेकिन उससे भी ऊपर अब ध्रुव ने उसके दिल में जगह बना ली थी। जिस तरह से पिछली बार ध्रुव ने उसे दक्ष से प्रोटेक्ट किया था, उसके बाद से मेहर उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। मेहर को समझाने के बाद प्रतीक ने उसे अपने कमरे में भेज दिया। उसके जाते ही प्रतीक रायचंद ने किसी को कॉल किया और कहा, मुझे ध्रुव राणा के हर एक मोमेंट की खबर चाहिए। क्या वो सच में अपने सो कॉल्ड एग्जाम्स के चलते लंदन गया है या मामला कुछ और है? मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं उसके लाइफ में कोई लड़की तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे खत्म कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उनके लंदन के विला की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अंदर घुस पाना मुश्किल है। बाहर से ही पता लगाने की कोशिश करूंगा। सामने से एक आदमी की आवाज आई और कॉल कट हो गया। वहीं दूसरी तरफ कृषा बाहर आई तो ध्रुव अभी भी साइकिलिंग करने में लगा था। अचानक कृषा उसके आगे आकर खड़ी हो गई। कृषा को बचाने के चक्कर में ध्रुव का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। क्रिश, आर यू ऑल राइट? ध्रुव ने तुरंत पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, और नहीं भी। जब मेरा ही पति और बेटा मन ही मन कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और मुझे कुछ बता नहीं रहे तो कैसे ठीक हो सकती हूँ? आखिर तुम दोनों बता क्यों नहीं देते कि क्या चल रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी तुम दोनों की हरकतों की वजह से, कृषा ने इरिटेट होकर कहा। ध्रुव जल्दी से साइकिल से नीचे उतरा और कृषा का हाथ पकड़कर उसे वहीं पास लगी बेंच पर बैठाया। ध्रुव ने कृषा के परेशान चेहरे को देखा तो वो गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तारा को लेकर अजीब फील होता है, आई विल नॉट डिनाई, पर मेरा मन कर रहा है मैं अभी उसके पास जाऊं। और बोलते हुए ध्रुव रुक गया। कृषा उसकी बात पूरा करते हुए बोली, और एक अच्छा किस करूं? इतना भी नहीं सोचा है, ध्रुव हल्का हंसकर बोला। मुझे उससे प्यार प्यार नहीं हुआ है, बस वो मुझे अच्छी लगने लगी है, मुझे उसकी खुशी दुख से फर्क पड़ने लगा है। कृष, तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो? मुझे भी वो ज्यादा अच्छी लगी थी। तुम वापस जाकर उससे बात करो, शायद वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचती हो, कृषा ने उसे समझाते हुए कहा। ध्रुव से ज्यादा एक्साइटेड तो कृषा लग रही थी।
वो मेरे बारे में कुछ भी सोचती हो, लेकिन फैक्ट ये है कि वो हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करती है, और मैं किसी इनोसेंट को बेवजह इस दुनिया में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ध्रुव ने काफी समझदारी से कहा। युग भी यही सोचता था, तभी उसने कृषा को वापस ऑस्ट्रेलिया भेजने का डिसीजन लिया था। हाँ, ये भी है, मैं तो कम से कम माफिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो चाहकर भी इस सच को बदल नहीं सकती। अच्छा हुआ ना मेरी शादी युग से हो गई और उसने मुझे हर एक खतरे से प्रोटेक्ट किया, वरना मुझे कभी भी खुलकर अपनी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। अभी याशी के साथ भी यही हो रहा है तो देखकर बुरा लगता है, कृषा ने मायूसी से कहा। कभी कभी कृषा याशी में खुद को देखने लगती थी, जहाँ उसे बचाने के लिए सबसे दूर रखा गया। इतनी सावधानी के बावजूद कृषा अपनी नियति से भाग नहीं पाई थी, आखिर में वो उसमें फंसी गई थी। कृषा को यूं मायूस देखकर ध्रुव ने उसे हक करके कहा, हमारे होते हुए याशी को कुछ नहीं होगा, वो मेरी एंजल है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, अब चलो मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, चलो तारा को वीडियो कॉल करते हैं, कृषा ने वापस बातचीत को उसी टॉपिक पर लाते हुए कहा। टाइम देखा है आपने? यहाँ रात के 10 बज रहे हैं, तो वहाँ तो और भी देर हो गई होगी। ऊपर से उसके पास मोबाइल नहीं है, तो मुझे वीर को कॉल करना होगा, वो इरिटेट हो जाएगा, मुझे उससे दूर रहना है। भूलिए मत, मैं मेहर से शादी करने का कमिटमेंट कर चुका हूँ और हमारी लेगेसी के लिए यही सही रहेगा, ध्रुव ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, तो कृषा ने भी ज्यादा जिद नहीं की। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद कृषा कमरे में चली गई थी, जहाँ युग उसी के आने का इंतजार कर रहा था। कृषा युग के पास आते हुए बोली, युग, पता है ध्रुव को तारा अच्छी लगने लगी है? ग्रेट डिस्कवरी क्रिश, चलो कुछ नया बताओ जो मुझे पता ना हो, युग ने आइज रोल करके कहा। तुम्हें सब पहले ही पता क्यों होता है? अपने बेटे को समझाओ ना, क्या जरूरत है मेहर से शादी करने की, कृषा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। युग ने उसे अपनी बाहों में आने का इशारा किया तो कृषा उसके बगल में जाकर लेट गई थी। युग ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है, ना पहले शादी के लिए किया था और ना ही अब शादी ना करने को करूंगा। वो जिससे शादी करना चाहता है करे, उसकी लाइफ है। लेकिन तुम उसके डैड हो, तुम्हें उसे सही गलत समझाना चाहिए, कृषा बेचैन होकर बोली। जहां वो गलत करेगा मैं खुद उसे हाथ पकड़कर पीछे खींच लूंगा, लेकिन इस मामले में कभी बीच में नहीं बोलूंगा, उसकी लाइफ है, कहा ना, वो जिससे शादी करना चाहे कर सकता है, मैं उसे कभी मना नहीं करूंगा। अब ज्यादा मत सोचो, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन तुम कब बड़ी होगी? मैंने सुना तुम्हारे और बेबी डेविल की बातों को, क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी, वो उससे मिलने कहने वाला था और तुमने डायरेक्ट किस करने तक का सोच लिया, युग ने टॉन्टिंग वे में कहा। मैं तो बस आइडिया लगा रही थी, कृषा ने मासूमियत से कहा। युग ने उसे अपने करीब खींचकर अपने ऊपर ले लिया। वो बोला, अपनी फैंटेसीज के लिए ध्रुव को फोर्स मत करो। नहीं तो, कृषा हड़बड़ाकर बोल रही थी कि युग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया था। कृषा युग के साथ अपने प्राइवेट स्पेस को एंजॉय कर रही थी तो वहीं ध्रुव अपने कमरे में आया। वहां आते ही उसने सीधा मेहर को कॉल किया। ध्रुव ने तारा को तो कॉल करने से रोक लिया था क्योंकि काफी देर हो गई थी, लेकिन मेहर को कॉल करते वक्त उसने वक्त का जरा भी ख्याल नहीं किया। मेहर सो चुकी थी लेकिन मोबाइल की रिंग बजाने पर उसकी नींद टूटी। वो गुस्से में कॉल रिसीव करके चिल्लाने वाली थी कि तभी उसने देखा ध्रुव का कॉल था। मेहर जल्दी से उठकर बैठ गई। मेहर की कॉल रिसीव करते ही सामने से ध्रुव ने इंटेंस वॉइस में कहा, सो गई थी क्या? नहीं, बस सोने की कोशिश कर रही थी। चलो, तुम्हें मेरी याद तो आई, वरना लगा था कि तुम मुझसे इतने नाराज हो कि बात ही नहीं करोगे, मेहर ने धीमी लो वॉइस में कहा। हाँ, उस वक्त मुझे जाने की जल्दी थी और गुस्से में मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, ध्रुव ने सफाई दी। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे कॉल किया। बताओ, अब सब ठीक है ना, खासकर तुम्हारा मूड, मेहर ने काफी नरमी से पूछा। ध्रुव के कॉल के साथ ही उसका गुस्सा भी खत्म हो चुका था। ध्रुव कुछ पल रुका और फिर उसने कहा, हाँ सब ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरे एग्जाम्स होते ही मैं वापस मॉम डैड के साथ मुंबई आने वाला हूँ। अपने डैड से कहो कि सगाई की तैयारी कर ले, अब मैं और डिले नहीं करना चाहता, सगाई के बाद जल्द ही शादी कर लेंगे। एक महीने का टाइम ठीक रहेगा ना प्रिपरेशन के लिए? ध्रुव का कॉल आने पर मेहर की नींद पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन जो भी अभी उसने कहा उसे सुनकर मेहर को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने हाथ पर पिंच किया और फिर दर्द के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर पहले वो प्रतीक के साथ ये सोचकर बेचैन हो रही थी कि ध्रुव से शादी करने के लिए मना ना करे, और कहां अब ध्रुव कॉल करके शादी जल्दी करने का बोल रहा था। मैं तो कहती हूँ इतना टाइम लेने की क्या जरूरत है, सगाई के बाद जस्ट एक हफ्ते में शादी करते हैं, मेहर ने जवाब दिया। ठीक है, फिर यही सही, वहां आकर बात करते हैं। उम्मीद है कि तुम सारी प्रिपरेशन करवा लोगी, वरना मुझे चाचू और मासी को कॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली आई वॉन्ट कि सारे फंक्शंस राणा मेंशन से हों, ध्रुव ने शांत लहजे में कहा। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी, मैं कल ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगी, मेहर एक्साइटेड होकर बोली। वो आगे भी और कुछ कहना चाहती थी लेकिन ध्रुव ने कॉल कट कर दिया। मेहर अपनी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी, तो वहीं इस वक्त ध्रुव के चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। वो जानता था कि उसे कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, यहाँ तक कि योग और कृषा ने भी उसे अपनी मर्जी से शादी करने का कह दिया था, लेकिन उसके बाद भी ध्रुव ने अपने प्यार के बजाय अपने मकसद और जिम्मेदारी को चुना था।